करो।
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। शब्दार्थ वीता मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधाः तथा क्रोध से, मत मया पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रिताः पूर्णतया स्थित, बहवः अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूताः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगताः प्राप्त। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी ना किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथा सक्तिस्ततो भावस ततः प्रेमाद्युदंचति, साधकानाम अयम प्रेमनः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म साक्षात्कार की स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव की अवस्था भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरो श्री युतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवद गीता अध्याय 4 जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक से पूर्व भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो भगवान अपनी दिव्य अवस्था के बारे में अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि सूर्यदेव श्री कृष्ण से ज्येष्ठ हैं, तो कैसे उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव को बताया। कथम एतद् विजानियान त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, ये अर्जुन का प्रश्न था, कैसे मैं मानूं कि पहले ये ज्ञान आपने सूर्यदेव विवस्वान को बताया। तो भगवान वास्तव में अपनी दिव्य अवस्था को यहाँ अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। भगवान अर्जुन को बताएं कि आपके और मेरे अनेक अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन आप उन सबको नहीं जानते और मैं इन सबको जानता हूँ। और फिर भगवान उपदेश देते हैं कि कैसे भगवान अजन्मा है, अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से इस जगत में आते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान स्थापित करते हैं कि वे यहाँ पर अंतरांग शक्ति के माध्यम से आते हैं। भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान आध्यात्मिक जगत से यहाँ अवतरित होते हैं और हमारी तरह भगवान की बहिरंग शक्ति या महामाया के द्वारा इस जगत में नहीं आते। तो हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में बहुत ही भेद है, ये भगवान स्थापित करते हैं। और फिर भगवान का यहाँ आने का क्या कारण है, ये भी भगवान अर्जुन को बताते हैं। इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ये विधि को जो समझ जाता है, श्री कृष्ण को जो तत्वतः जानता है या जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, उनका इस जगत में आना और इस जगत में उनके सारे कार्यकलाप वे दिव्य है, वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद इस जगत में पुनः नहीं आता और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है जो सामान्यतया लोग समझते हैं। इसीलिए भगवान के कार्यों का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान स्थापित किए कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो भगवान ने किया। और जो इसको तत्वतः समझ लेता है तो वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद इस जगत में वापस नहीं आता है और कहां जाता है, भगवान के दिव्य धाम मामेति उसको प्राप्त करता है। इस श्लोक में भी भगवान समझा रहे हैं कि वो दिव्य अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान अगले श्लोक में, इसके पूर्व श्लोक में बताए मामेति मेरे पास आता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं मद भाव मागताः, मेरे भाव को प्राप्त करना। तो किस प्रकार से वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, यहां वर्णन किया है। भगवान कहते हैं वीतराग भया भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। तो भगवान निहात बता रहे हैं कि तीन प्रकार की बाधाएं हैं जो एक जीव को भगवान के प्रति प्रपत्ति या शरणागति करने से रोक रही है, और जो व्यक्ति इन तीन बाधाओं को पार करता है वो भगवान के प्रति शरणागत हो सकता है। तो ये सबकी आसक्ति है शरणागति के प्रति। वो तीन आसक्ति क्या वर्णन भगवान कह रहे हैं, राग भय और क्रोध, ये तीन बाधा है। तो हम देखते हैं इस जगत में हर एक व्यक्ति का राग है। राग मतलब आसक्ति या आकर्षण, और उसका विपरीत है विराग या वैराग्य, जहां राग नहीं है। तो इस जगत में हर एक व्यक्ति की बहुत प्रगाढ़ आसक्ति है, और सबसे पहली आसक्ति है अपने शरीर से। यह हमारा मिथ्या अहंकार, गलत पहचान, जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर ये गलत पहचान में आता है कि मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और फिर इस शरीर से जुड़ी हुई अन्य चीजों के प्रति आसक्ति, या आसक्ति का विस्तार है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है अत गृह क्षेत्र सुता आप्त वित्त जनस्य मोहो यम अहम ममेति ममाहम इति दुर्धियः। दुर्धियः, धियः मतलब बुद्धि। तो हमारी बुद्धि में किस प्रकार से विकार आता है, यह अहम ममेति भाव उत्पन्न होता है। शरीर से, और फिर शरीर से जुड़ी हुई चीज जिसकी शुरुआत होती है गृह, ये घर मेरा है, इस घर घर में रहने वाले जो सदस्य हैं वो मेरे हैं, इस घर की संपत्ति मेरी है, और इस घर से जुड़े हुए अन्य घर, ये समाज, ये मेरा समाज है, और ये पूरा समाज चल रहा है वित्त पर, तो ये धन मेरा है। तो इस प्रकार की आसक्ति उत्पन्न होती है। तो जिस व्यक्ति में ये राग है, राग अवश्य होगा, ऐसा नहीं है कि राग नहीं होगा, राग अवश्य होगा, लेकिन ये राग अत्याधिक राग कि यही सब कुछ है। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं द्वितीय स्कंद से, जिसका आधार है परीक्षित महाराज का प्रश्न। परीक्षित महाराज, उनको एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था कि वे 7 दिन के पश्चात ये शरीर को छोड़ देंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। एक तक्षक नामक सांप के माध्यम से इस शरीर को छोड़ेंगे। तो परीक्षित महाराज अपना राज्य इत्यादि छोड़कर गंगा तट पर सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि एक मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य, क्या कर्तव्य है मनुष्य जीवन का, विशेष रूप से जो मरणासन पर है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। और सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो उन प्रश्नों के प्रारंभिक अवस्था में वे सुखदेव गोस्वामी से बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये जो राज्य परिवार समाज इत्यादि जो आप छोड़कर आए हैं, तो इस अवस्था में स्थित रहिएगा, पुनः उस अवस्था में वापस मत जाइएगा, क्योंकि वास्तव में उसमें कोई लाभ नहीं है। तो जो जीवन का परित्याग, वास्तव में परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों का जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा पर आधारित है। उनके जीवन में कोई भौतिक विचार नहीं है, उनके कार्य भी भौतिक नहीं है, लेकिन एक साधारण सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो स्थापित करने के लिए, उसका दर्शन देने के लिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार का भौतिक जीवन होता है। और आप बहुत भाग्यवान हैं कि उस भौतिक जीवन को छोड़कर यहां पर कृष्ण कथा सुनने के लिए आए हैं, तो उस भौतिक जीवन में वापस मत जाइएगा। तो शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रन नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। कि वे घर में तो रह रहे हैं, जिसका उद्देश्य है शास्त्र के अनुसार भगवान को केंद्र में रखना और भगवान की सेवा करना, इसीलिए उसे कहा गया है गृहस्थ आश्रम। वैदिक शिक्षा के अनुसार मनुष्य जीवन जिसका उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, वो चार वर्णों और आश्रम में विभाजित किया जाता है। हर एक अवस्था में परिश्रम किया जाता है भगवत साक्षात्कार के लिए। तो जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, यहाँ पर कई लोग आते हैं और पूछते हैं ये आश्रम है, यहाँ पर आश्रम है? जी आश्रम है। क्या उद्देश्य है? यहाँ पर हर एक व्यक्ति तत्परता से भगवत सेवा सीख रहा है, उसमें प्रगति करने का हेतु है। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दिव्य नामों का जप करना, पूरा दिन भगवान की अलग अलग सेवाओं में व्यस्त रहना, इस प्रकार से भगवत चेतना में विकसित होना। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन भी आश्रम है, वहां पर भी उद्देश्य है भगवत विज्ञान में आगे बढ़ना। तो यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वे घर में तो रह रहे हैं लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उद्देश्य इंद्र तृप्ति, इसीलिए उनको संबोधित किया है गृह मेधी, गृहस्थ नहीं है। और क्यों गृह मेधी है? क्योंकि उनके जीवन में नाना प्रकार के विषय, हजारों विषय हैं चर्चा करने के लिए, हजारों विषय हैं चिंतन करने के लिए, लेकिन एक भी विषय भगवत संबंधी विषय नहीं है, या कृष्ण संबंधित एक भी विषय नहीं है, आत्मज्ञान से संबंधित एक भी विषय नहीं है। और हम देख रहे हैं सामान्य जीवन में विरला ही कोई व्यक्ति होगा जो आत्मज्ञान के बारे में बात करेगा, और अगर वो बात करेगा तो भी उसे रोक दिया जाता है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं बहुत आप भाग्यवान हैं, वो जीवन छोड़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि उस जीवन में कोई लाभ नहीं है। अपश्यताम आत्मतत्वम, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन वास्तविक जो चीज देखना है आत्मतत्व, उसको तो कोई नहीं देख रहा है। गृहेषु गृहमेधिना, तो गृहमेधी जीवन है, उसका परित्याग कीजिए। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन वा। तो वो घर में रह रहे हैं और उनके कार्यकलाप क्या है, दिन रात क्या कार्यकलाप करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः, रात को सोना या इंद्र तृप्ति में व्यस्त जीवन, और पूरा दिन परिश्रम करना परिश्रम करना परिश्रम करना। दिवाचार थे हयाराजन, दिवा दिवस में दिन में क्या परिश्रम करता? अर्थ उपार्जन के लिए, केवल अर्थ उपार्जन। जैसे एक पशु है, एक चिड़िया है, तो वो सुबह उठकर कहाँ दाना कहाँ दाना कहाँ दाना, इस प्रकार से मनुष्य समाज में दिन शुरुआत होता है, कहाँ पैसा 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 पैसा, चोरी करो डाका डालो कुछ भी करो पैसा लाओ, क्यों? कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब का भरण पोषण करना है। और वर्तमान समाज में जो कुटुंब की आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से पूर्ण करता है उसे कहते हैं दक्ष। एक्सपर्ट व्यक्ति कौन है? जिसको आत्मज्ञान है, जिसका चरित्र अच्छा है? नहीं, वो कोई मानदंड नहीं है। मानदंड क्या है? जो पारिवारिक आवश्यकताओं को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सके उसे कहते हैं दक्ष। श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में वर्णन है कि जो भी पारिवारिक आवश्यकताओं को तुरंत पूर्ण करता है वो दक्ष है। तो पूरा दिन परिश्रम करना, और जो भी कुटुंब की आवश्यकता है, बड़ा घर चाहिए ले लो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए दो गाड़ी चाहिए दो गाड़ी ले लो, बाइक मोबाइल फैशनेबल कपड़े इत्यादि, ये जो पूर्ण कर सकता है वो दक्ष है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अच्छा हुआ, देखिए ये जीवन है, दिन केवल अर्थ उपार्जन में और रात या सोने या इंद्र तृप्ति में, तो ये जीवन है, अच्छा हुआ आपने इसका परित्याग किया। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से मोहित हो चुके हैं, वास्तविक चीज को जान ही नहीं पाते। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैनेश्व असत्स्वपि तस्मात् प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, कि वो व्यक्ति पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। तो वो व्यक्ति क्या देख रहा है? ये सोचता है देह, ये जो मेरा शरीर है, जैसे हमने शुरुआत में चर्चा किया कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है वो कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत कठिन है। तो ये जो व्यक्ति है गृहमेधी व्यक्ति, उसका केंद्र क्या है? देह। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मेरा शरीर। अगर शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए जीवन का सारा समय शक्ति शरीर के पीछे लगाना। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, शरीर को संभालो, पैसा भी आ जाएगा बाद में, भक्ति वक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो वो व्यक्ति का पूरा दृढ़ श्रद्धा है शरीर 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 सब कुछ है, क्योंकि शरीर से सुख मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। तो देह आप तो इस शरीर से जुड़े हुए अन्य लोग, आज हम देखते हैं प्रगत समाज में बहुत सारे लोगों के अनेक अनेक संपर्क होते हैं, इस मिनिस्टर को जानते हैं, इस कमिश्नर को जानते हैं, यहां हमारा संपर्क है वहां हमारा संपर्क है, क्योंकि वो सोचते यही जीवन में महत्वपूर्ण चीज है। हमारा कोई भी कार्य नहीं रुकता है क्योंकि हमारे बहुत सारी पहचान है, और इनके साथ संबंध अच्छा रखने से हम जीवन में वास्तविक सुख अनुभव कर पाएंगे, ये जीवन की सिद्धि है। देहा आप तक कलत्र आदिशु, कलत्र मतलब परिवार के सदस्य, जिसकी शुरुआत होती है पत्नी बच्चे समाज के अन्य सदस्य, तो पूरा जीवन का जो समय शक्ति है इसके पीछे व्यतीत करते हैं और उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। जैसे हम देखते हैं पुत्र के जन्म से ही हम विचार करना शुरू करते हैं कि आगे जाके ये डॉक्टर बनेगा और ये इंजीनियर बनेगा और फिर इतना सारा धन कमाएगा और इस प्रकार से समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी और इस प्रकार से मैं बहुत सुख अनुभव करूंगा, सब लोगों को मैं बता पाऊंगा, और पूरा जीवन का समय शक्ति इसमें। इसलिए हम देखते हैं जब भगवत प्रचार करने कोई जाता है और उनको कहता है कि आपके जीवन का कम से कम कुछ समय भगवत साक्षात्कार के लिए लगाइए, तो कहते नहीं हमारे पास समय नहीं, हमारी बहुत जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हमारे पास है। जो भगवत भक्त है उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारी है इसलिए हमारे जीवन में थोड़ा सा भी समय नहीं है भगवत साक्षात्कार के लिए। तो ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं क्या कहां समय जा रहा है, देह, समाज में संपर्क बनाना, परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचना, अन्य कोई चिंतन नहीं करना, देहापत्र कलत्रादिषु किस प्रकार से सोच रहे हैं, आत्म सैनेश्व, ये सैनिक है मेरी जो सेना है उसमें सैनिक कौन है, मेरा शरीर, मेरे समाज में संपर्क, मेरे परिवार के लोग, जब भी कुछ समस्या आएगी ये सैनिक लड़ेंगे और मुझे बचाएंगे। लेकिन सुखदेव के गोस्वामी कहते हैं आत्म सैन्येषु असत स्वपि, लेकिन ये सब तो असत है। ये शरीर आपका कितने समय तक चलेगा, ये समाज में जो आपके संपर्क है कितने समय तक चलेंगे, जिन परिजनों के बारे में हम सोच रहे वो कहां तक चलेंगे हमारे साथ, अवश्य उनके बारे में सोचना, लेकिन इस प्रकार से नहीं सोचना कि केवल यही मेरे सैनिक है। आत्म सैनेश्व असत स्वपि, ये सब असत है। तस्मात प्रमत्तो निधनम, इन सब का निधन हो रहा है। शरीर, मेरे परिवार में और भी सदस्य थे जो पूर्वज थे, वे आए और वे चले गए। इस प्रकार से ये शरीर जाएगा, ये परिजन जाएंगे, ये समाज में जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा है सब कुछ चला जाएगा। पश्यन अपि न पश्यति, ये देखते हुए भी वो व्यक्ति नहीं देख रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताएं कि अभी ये अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो कृपा करके पुनः उस जीवन में नहीं जाइएगा। यहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होती है। वो दर्शन दे रहे हैं कि वास्तव में वो जीवन कैसा था और ये जीवन कैसा है। तो यहां पर भी हम देखते हैं भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार के राग में होता है, आसक्ति में होता है, हाँ, उसके लिए भगवत साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव, बहुत अटैच्ड है। आगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्रसक्त, आसक्त भी बहुत ही ऊंची अवस्था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो इस प्रकार के भौतिक भोग विलास में जिसकी रुचि होती है, भोग और ऐश्वर्य, बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिसको जीना है, प्रसक्त आत्मा, तो वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम, माया द्वारा उसकी वास्तविक चेतना उसका अपहरण हो जाता है। और व्यवसायात्मिका बुद्धि के वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश हूं, मेरा कार्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, ये मेरे जीवन का वास्तविक स्वार्थ है, ये व्यवसायात्मिका बुद्धि कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि राग ये पहली बाधा है। फिर दूसरा भगवान कह रहे हैं भय, तो भय है हर एक व्यक्ति को। एक भौतिक व्यक्ति को भय है कि जो भौतिक चीज प्राप्त कर ली है वो चली नहीं जाए, हाँ, सोचती और कांक्षती, उनका जीवन दो चीज में है। कांक्षती मतलब जो चीज नहीं मिली है उसके बारे में चिंतन करना, मेरे पास धन नहीं है, बहुत धन आ जाए, बहुत धन आ जाए, बहुत धन आ जाए, तो दिन रात प्रयत्न कर रहा है धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, तो ये सोच रहा है। कांक्षती मतलब आकांक्षाएं हैं, और धन प्राप्त होने के बाद सोचती मतलब चिंता है कि धन प्राप्त हो गया लेकिन धन चला नहीं जाए, अभी धन आ गया है अभी धन चला नहीं जाए, हाँ, ये स्थिति है। तो ये धन से संबंधित होता है, शरीर की अवस्था, जैसे सुंदरता, हर एक व्यक्ति सुंदर बनना चाहता है तो प्रयास कर रहे हैं, सुंदर बनना, सुंदर बनना, सुंदर बनना, अलग अलग प्रकार की चीजें कर रहे हैं, और सुंदरता प्राप्त होने के बाद चिंता है कि अभी सुंदरता चली नहीं जाए, लेकिन ये सब तो असत है, कब तक चलने वाला है। तो ये भय है एक भौतिकतावादी व्यक्ति को। यश, आज बहुत ही यशस्वी व्यक्ति हूं, मुख्यमंत्री हूं, सब लोग मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगला चुनाव आ रहा है और ये स्थान चला गया, कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा तो मेरा यश चला जाएगा, ये वैभव चला जाएगा, तो एक प्रकार प्रयास चल रहा है और एक प्रकार वो चिंता है, प्राप्त हो गया है लेकिन वो चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जो भी चीज भौतिक है वो हमेशा अस्थाई है, वो कभी भी स्थाई नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा चिंताओं में रहेगा। प्रहलाद महाराज इसलिए बता रहे हिरण्यकश्यप को, जो तीनों तीन लोगों के स्वामी हैं, तो प्रहलाद महाराज उनको कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति जो केवल भौतिकता में ही लिप्त हैं और कोई चीज का दर्शन नहीं कर रहे हैं, वे हमेशा चिंताओं में रहेंगे, क्योंकि आपने असत चीज को सत मान लिया है। सदा समुद्विग्न ध्याम, ध्याम मतलब बुद्धि, सदा हर समय समुद्विग्न चिंताओं में होगी, क्यों? असत ग्रहात, असत चीज को आपने सत मान लिया है। बाह्य रूप से बहुत दिखाएंगे, हम बहुत सुखी है, हमें कोई भय नहीं है, लेकिन अंदर से चिंताम अपरिमेयाम, भगवान कह रहे हैं अनगिनत चिंताएं होंगी, तो ये भय है। दूसरा हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रकट हो रहे हैं लेकिन पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उन्हें भी भय है। प्रभुपाद यहां लिखते हैं, जो व्यक्ति समझ चुका है कि ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये जगत है, ये वास्तविक मेरा स्थान नहीं है, ये जगत अस्थाई है, यह हर एक चीज नश्वर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का सही बोध नहीं होने के कारण वो व्यक्ति भी भयभीत है। वास्तव में पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण साक्षात्कार है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण, जो भगवान भगवद्गीता में उद्घोषित करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, हर एक चीज मुझसे उद्धृत है, अहम सर्वस प्रवर्तते, हर एक चीज का आधार मैं हूं। और वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है इस नश्वर भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस परम धाम में प्रवेश करना जहां भगवान के साथ हमारा आध्यात्मिक संबंध है, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। अभी वर्तमान स्थिति में ये आत्मा पे आवरण है शरीर का, लेकिन मूल रूप से हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है और भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप है, और भक्त का और भगवान का अलग अलग रसों में आदान प्रदान होता है। मुख्य रूप से 5 रस है जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में भगवान और भगवान के भक्तों का आदान प्रदान होता है, ये स्वस्थ जीवन है। और वर्तमान हमारा जो जीवन है वो अस्वस्थ रुग्णावस्था बीमारी जीवन है। तो इस जगत में हमारे जो अनुभव हुए हैं उसके कारण हम ये आध्यात्मिक जीवन को सही तरह समझ नहीं पाते। हाँ, जैसे कहावत है ना कि जो दूध का जला है वो छाछ को भी फूंक के पीता है। तो इस जीवन में हमारी अवस्था ऐसी है कि ये जो भौतिक संबंध में हमें लाभ नहीं हुआ, इसीलिए आध्यात्मिक संबंध को भी हम उस तरह से देखते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे तो इस जगत में, भौतिक जगत में हर एक संबंध का मूल आधार है शोषण। बाह्य रूप से हम कह सकते हैं मित्रता है, प्रेम है, लेकिन सब चीजों का मूल आधार है शोषण। ये भौतिक जगत का सार है। क्यों? क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं और अपूर्ण व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए वो किसी से आदान प्रदान करता है। मित्र जीवन में हम देखते हैं, हम कहते हैं आप मेरे परम मित्र हैं, तो आप बहुत एक दूसरे के परम मित्र हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, इससे मुझे क्या लाभ होगा? ये बहुत धनी व्यक्ति है, इससे मित्रता करेंगे तो अच्छा है, कुछ धन मिल जाएगा मुझे। इस प्रकार से ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो इनके साथ हमारा संपर्क स्थापित करना चाहिए जिससे मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा। और ऐसे यशस्वी व्यक्ति भी हमारे पास आते हैं, आप हमको वोट दीजिए हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन अंदर उद्देश्य क्या है, मेरा लाभ क्या होगा? ये इस जगत का आधार है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो इस जीवन में ये जो कटु स्वाद हमको मिला है, तो आध्यात्मिक जीवन में वो संबंध जो पूर्ण रूप से मधुर है वो समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति त्रस्त है अनेक अनेक समस्याओं से, जैसे ये शरीर लिया तो शरीर के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, शरीर के साथ वृद्धावस्था है, शरीर के साथ बीमारी है और नाना प्रकार के दुख है। दुख मतलब केवल शारीरिक नहीं, मानसिक दुख भी है। बीमारी से तो शारीरिक कष्ट होता है, जैसे कहीं गहरी चोट लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई और हमको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उससे बड़े घाव मानसिक घाव है, अपमानित होना, या जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन असत अवस्था के कारण वो इस जगत को छोड़ के चले जाएंगे, तो हृदय में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए व्यक्ति सोचा ये सब समाप्त कर दिया जाए, कोई शरीर नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं, सब समाप्त, सब शून्य, दी एंड। उस विचारधारा के प्रति अज्ञानवश सोचता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन को सही तरह से नहीं समझ पाया, ये बीमार अवस्था है। लेकिन वास्तव में स्वस्थ जीवन है उसको शास्त्र के माध्यम से समझना है। तो ये भय है, भय मुक्ति, कोई पुनर्जन्म नहीं, निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन करना, ये सब की विचारधारा है। आप देखेंगे सामान्यतः हम सब जाते हैं मंदिर में, भगवान के अर्च विग्रह के सामने प्रणाम करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे पुजारी हैं जो कई कई सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंदर में भाव क्या है, अंततोगत वह सब निराकार है। जरा प्रवेश करेंगे तो ये समझेंगे, उत्तर भारत में बहुत बड़ा संप्रदाय है जो सीताराम की सेवा करते हैं, सीताराम सीताराम बोलते हैं, लेकिन अंततोगत वह ये सोचते हैं कि राम जो है वो निराकार ब्रह्म ज्योति से आए हैं, जो मूल तत्व है वो निराकार ज्योति है। क्योंकि ये भय है कि स्वरूप मतलब कष्ट, तो इस सबको समाप्त किया जाए। और इसी की एक अवस्था है जिसमें क्रोध है, जब हम बताएंगे कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है तो उसको स्वीकार नहीं करना और क्रोध व्यक्त करना, कोई भगवान नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वीकार करना मतलब भगवान से अधीन स्थिति स्वीकार करना। तो हम देखते हैं कि ये इस भौतिक जगत में चल रहा है, सामान्य जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी हम आते हैं लेकिन इन सब भूल धारणाओं को साथ में लेकर आते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो भौतिक चीजों से आसक्त है, वो भौतिक प्रकृति में है, उसे कहते हैं प्राकृत भक्त। भक्ति है अप्राकृतिक अवस्था, भक्ति प्रकृति के तीनों तीन गुणों से परे है, अप्राकृत स्थिति है। लेकिन एक व्यक्ति भौतिक प्रकृति से मुक्त नहीं हुआ है, वो अभी भी प्राकृत अवस्था में है लेकिन भक्ति कर रहा है, कनिष्ठ अधिकारी, तो वो भक्ति कर रहा है बहुत सारी आसक्ति के साथ। वो आएगा भगवान की सेवा करेगा लेकिन उद्देश्य क्या है, धन मिल जाए, मेरे परिवार में सब अच्छा हो जाए, यश प्राप्ति हो जाए, बहुत सारी समस्या चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, सब केस सॉल्व हो जाए हमारा, इसके लिए भगवान की सेवा में आए हैं। उस अवस्था में वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, वो भगवान के पास आ जरूर रहा है लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके जीवन में एक वृत्तांत है। एक व्यक्ति थे, उनकी पुत्री थी छोटी सी और उसके बीमारी थी और गंभीर बीमारी थी। तो वे आने लगे मंदिर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के सामने, बहुत उत्साह से प्रणाम करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, गौर 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 गौर, अभी आप ही मेरे जीवन है, मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, और कोई अभिलाषा नहीं है, बस केवल भक्ति। इस प्रकार से प्रतिदिन आते और जोर जोर से चिल्लाते, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं ना जो कि हम कृष्ण भक्त हैं। अभी हम गए थे कुछ दिन पहले कुछ प्रचार करने के लिए, तो एक व्यक्ति ऐसे आए, हम कृष्ण भक्त हैं, हमको माइक दीजिए, हमको कुछ बोलना है, ठीक है। तो माइक लेके बोले, आ काना आ, तुमको मेरी आंखों में समा लूं, मेरे पलकों में बिठा लूं, अब तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता और तेरे बिना तो मैं मर भी नहीं सकता। और इस प्रकार से हम हृदय में से बहुत सारी अलग अलग चीजें बोलते हैं, कविताएं लिखते हैं नाना प्रकार की। तो व्यक्ति इस प्रकार से गौर 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 गौर, अभी आप ही सब कुछ है मेरे लिए। और कुछ दिनों के बाद बीमारी के कारण उनकी पुत्री वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भक्तों ने देखा कि अभी बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रहे हैं, तो किसी ने उनसे मुलाकात करके पूछा कि आपका भजन कैसा चल रहा है, गौर भजन कैसा चल रहा है आपका। तो बोला, कौन गौर, कोई गौर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो मेरे साथ ये ना होता। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को यह बात बताया तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि इन्होंने कभी भी गौर भजन नहीं किया है, इन्होंने अपने जन्म में जो कुछ भी किया है लेकिन इन्होंने कभी भी गौर भजन नहीं किया है। इनके जो गौर हैं वे श्रीवास ठाकुर के गौर नहीं है। वास्तविक गौर कौन है? चैतन्य महाप्रभु आते हैं अपने पार्षदों के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त विंद। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में पूरी रात रात कीर्तन करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ रात को कीर्तन कर रहे हैं और श्रीवास ठाकुर हैं, उनके परिवार के सारे सदस्य हैं, तो थोड़ा सा पीछे से आवाज आया कि कोई रो रहा है घर में। तो श्रीवास ठाकुर पीछे गए घर में, उन्होंने देखा घर की सारी महिलाएं रो रही हैं, तो उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है रोने का? तो श्रीवास ठाकुर ने बताया, उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का देहांत हो गया है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा अच्छा, लेकिन आप ऐसे शोक नहीं कीजिए, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और उनके कीर्तन में विलंब होगा तो आप शांत रखिए, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में खेद मत कीजिए। और श्रीवास ठाकुर आते हैं और कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अंतर्यामी है, चैतन्य महाप्रभु तुरंत समझ जाते हैं और श्रीवास से पूछते हैं कि क्या इस घर में कुछ अमंगल हुआ है? तो श्रीवास ठाकुर कहते भगवान जहां पर आपका कीर्तन हो रहा है वहां अमंगल कैसे हो सकता है, वहां तो कोई अमंगल नहीं है, जहां पर आप हैं और ये कीर्तन हो रहा है सब मंगलमय है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, फिर भी कुछ तो अमंगल हो सकता है, कुछ है आप बताइए। बोले हाँ, मेरे पुत्र का देहांत हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और उस बालक को छूते हैं और बालक पुनर्जीवित होता है और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं बताओ क्या हुआ। तो वो बालक बताते हैं कि मेरे पूर्व कर्म फल के अनुसार मेरा इस घर में जन्म हुआ, अभी मेरा समय आया है, मुझे इस जगत से जाना है, तो भगवान मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़। तो वास्तव में भक्ति से अनुमान बताते हैं कि गौर कौन है, श्रीवास ठाकुर के गौर हैं, ये चैतन्य महाप्रभु हैं और वास्तव गौर भजन इस प्रकार से होता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि भौतिक आसक्ति के कारण हम जो भी भक्ति में प्रक्रिया कर रहे हैं वो वास्तव में भजन नहीं है। हाँ, तो भगवान यहां बता रहे हैं कि मद भाव मागता, अगर मेरे भाव को प्राप्त होना है तो किस प्रकार से होगा? वीत राग भय क्रोध, ये जो आसक्ति है ये भय है भौतिक जीवन के प्रति और ये क्रोध है कि भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना, इन तीनों का परित्याग करना होगा। मद किस प्रकार से? मन मया माम उपाश्रिता, आपका मन पूर्ण रूप से मुझ में नियुक्त करना, माम उपाश्रिता मेरा आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि का आश्रय लेकर। यहाँ प्रभुपाल लिख रहे हैं कि जीवन की इन तीनों अवस्थाओं में, ये जो तीन अवस्थाएं वीत राग भय क्रोध, इन तीनों अवस्था से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान का आश्रय लेना, जैसे पूर्व महाजनों ने किया, बहवो ऐसे बहुत सारे महाजन हैं जिन्होंने इस मार्ग को ग्रहण किया, ज्ञान तपसा, ये मार्गदर्शन से ज्ञान प्राप्त किया और तपसा विज्ञान भी प्राप्त किया और पूर्ण रूप से पवित्र होकर भगवान के इस परम भाव को प्राप्त किया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद एक श्लोक में जो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं अपनी महान पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में, किस प्रकार से जीवन की निकृष्ट अवस्था से हम जीवन की परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में हम देखें तो हम सबके जीवन में कृष्ण प्रेम स्वाभाविक नहीं है, हम जीवन की निकृष्ट अवस्था में हैं, पूर्ण रूप से भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हैं, बाह्य रूप से भले नहीं कहें लेकिन अंदर से तो वही स्थिति चल रही है, तो जीवन की निकृष्ट अवस्था है। तो उससे जीवन की परम अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस विधि को यहाँ रूप गोस्वामी बताते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कैसे ये विधि शुरू होती, आदव श्रद्धा, कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा है कि कोई परम नियंता है, परमेश्वर है, वो नियंता है और मैं नियंत्रित हूं, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, तो कैसे उनको जान सकता हूं? अगर ये श्रद्धा किसी में है, आदो श्रद्धा तत साधु संग, तो क्या होगा? भगवान की विशेष योजना से उसे भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि का संग मिलेगा, क्योंकि ये योजना भगवान की है। जैसे एक पुत्र पिता को खोज रहा है, पिता भी तो पुत्र को खोज रहा है। ये अवस्था हम बार बार बताते हैं। जैसे आप सब गृहस्थ जीवन में हैं, आप देखते हैं माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं छोटे से, कुछ कारणवश अगर बालक कहीं खो जाता है तो बालक तो प्रयास कर रहा है पिता को ढूंढने का, लेकिन उस बालक से कई गुना ज्यादा प्रयास पिता कर रहा है बालक को ढूंढने का। बालक खाली खोज रहा है कहां है पिता, पिताजी कहां है, पिताजी कहां है, लेकिन सारी शक्ति पिताजी लगा रहे हैं इस बालक को ढूंढने के लिए, सारी योजना बनाते हैं। इस प्रकार हमारी स्थिति ऐसी है। अगर हम में ये श्रद्धा है, प्रामाणिक भाव है कि कोई तो परम नियंता है, कैसे मैं उनको जान सकता हूं, तो भगवान की दैवी योजना है जिसके माध्यम से भगवान हमको उस स्तर पर लाएंगे। तो ये कैसे कार्य करती है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, तो भगवान तुरंत ही हमको प्रामाणिक भक्तों का संग प्रदान करते हैं, और उस प्रामाणिक भक्तों के संग में हम भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, जिसे कहते हैं भजन क्रिया। भक्तों का मार्गदर्शन होगा ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तो जो व्यक्ति उसको गंभीरता से स्वीकार करता है, ये करना ठीक है, प्रातः जल्दी उठना, इस युग में एकमात्र विधि है भगवान के दिव्य नामों का जप करना, हरे नाम हरेर्नाम एव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यथा, वो स्वीकार करता है जी ठीक है, तो गंभीरता से हरिनाम स्वीकार करना। और जब तक हमारा पाप में जीवन है तब तक हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर सकते। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो चार प्रकार के पापों का परित्याग करना, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्याभिचार नहीं, नशा नहीं, नहीं, तो वो व्यक्ति योग्य है भजन क्रिया करने के लिए। अभी मार्गदर्शन के अनुसार वो भजन क्रिया कर रहा है, और वो भजन क्रिया की परिपक्व अवस्था होगी भगवान के किसी प्रामाणिक भक्त का पूर्ण रूप से आश्रय लेना। ये रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ गुरु आश्रय, सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु को खोजना, और फिर उनको शरणागत होना, और फिर उनसे जिज्ञासा करना, कृष्ण दीक्षानु शिक्षणम, क्या जिज्ञासा करना, किन शेयर में इन्वेस्ट करना, गुरु जी बताइए किसका भाव बढ़ने वाला है, कौन सी फील्ड सिलेक्ट करना, मेडिकल में डाले, इंजीनियरिंग में डाले, कौन सा व्यापार करना, क्या सही समय है, नहीं, कृष्ण दीक्षानु शिक्षणम, कैसे कृष्ण की सेवा करूं, अब तक के सारे जन्म में तो मैंने यही किया है, सभी जन्म में तो खाया पिया सोया ये सब किया, और कृष्ण दीक्षानु शिक्षणम कहाँ है, तो इस जीवन में कैसे मैं गंभीरता से कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, तो वो प्रश्न करना। तो ये भजन क्रिया, वहां भाव क्या है, दिखा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, कि अभी मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूं, आप मुझे बताइए, मेरे जीवन को परिवर्तित कीजिए, मुझे डांटिए, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, क्योंकि ये मन तो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है। तो ये अवस्था है जिसे कहते हैं भजन क्रिया। जब ये भजन क्रिया हम करते हैं तो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हमारा उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि जी अभी ये शरणागत हुआ है, अभी मैं उसको कृष्ण भक्ति में शिक्षा दूंगा। जैसे भगवान अर्जुन को देते हैं, अर्जुन पहले भगवान से तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अभी मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षित कीजिए, तब भगवान उनका जिम्मेदारी लेते हैं, और भगवान कहते हैं आप पंडित जैसी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन आप एक नंबर के मूर्ख हैं। असोचानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। तो इस प्रकार से भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर उनका मार्गदर्शन हम पालन करते हैं, तो फिर हमारे जो भी अनर्थ हैं, हमारी भौतिक आसक्ति भय इत्यादि, इससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। फिर निष्ठा, भगवान की जो सेवा है वो अविचल भाव में, जैसे शुरुआती अवस्था में हमारी जो भक्तिमय सेवा है वो डामाडोल रहती है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी मन किया कभी मन नहीं किया, ये अवस्था में चलती है, क्योंकि अनर्थ है हमारे हृदय में, अनर्थ है। लेकिन भजन क्रिया करने से ये अनर्थ धीरे धीरे चले जाते हैं। जैसे उदाहरणार्थ हम देखते हैं, हम कहते हैं कम से कम 2 घंटे समय निकालना हरि नाम करने के लिए, 16 माला जप करना, तो कितना कर रहे हैं, चल रहा है, कभी कभी 2 चलता है, कभी 5 चलता है, कभी 6 चलता है, क्यों क्यों, क्योंकि अनर्थ है। अभी भगवान की सेवा का साक्षात्कार नहीं, हरि नाम कड़वा लग रहा है, क्योंकि हमारी अन्य आसक्तियां हैं। प्रातः मंगल आरती में भाग लेना, कभी आए कभी नहीं आए, ठंड है, ये है वो है, तो ये अविचल भाव नहीं है। लेकिन जब ये अनर्थ चले जाएंगे तो हम इस भाव पे आएंगे जिसे कहते हैं निष्ठा। ठंड है, कष्ट लग रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है। अभी मन की इच्छा नहीं है भगवान का नाम लेना, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, तो इसे कहते हैं निष्ठा। और इस निष्ठा को, निष्ठा में अगर हम धीरे धीरे क्रमशः प्रगति करते हैं तो रुचि, जो कर्तव्य है उससे फिर आस्वादन उत्पन्न होता है। जो पहले कष्ट लग रहा था, जैसे मान लीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शीतकाल में स्नान करना कष्ट लग रहा है, निष्ठा के स्तर पे जो व्यक्ति है वो अवश्य आएंगे, लेकिन रुचि मतलब अच्छा लग रहा है भगवान की सेवा में, कष्ट भी अच्छा लग रहा है, रुचि, फिर उसमें प्रगति होगी। तो आसक्ति, अब उस कार्य के बिना हम जी नहीं सकते, भगवत सेवा के बिना जी नहीं सकते। फिर उसका प्रगत स्तर है भाव, और फिर वास्तव में प्रेम जो दिव्य अवस्था है। तो इन स्तर को क्रमशः एक व्यक्ति प्राप्त करता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है, ये वास्तविक अवस्था है। और अभी वर्तमान स्थिति में हम बाह्य बोल रहे हैं प्रेम प्रेम, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम, हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोच सकते हैं अभी हमारी अवस्था क्या है, साधु संग, अभी हम भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं, और भजन क्रिया, थोड़ा भजन क्रिया कर रहे हैं, फिर आएगा अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम बहुत ऊपर का स्तर है, अभी भजन क्रिया साधु संग ये अवस्था चल रही है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तो प्रगति का पूर्ण अवसर है, ये मार्ग है सिद्धि का मार्ग, तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जी पूछ सकते हैं। हमारा नुकसान है कि हम सनातन धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। आपने बताया सनातन, अच्छा कहा, क्या एटलीस्ट आपको पता है कि सनातन धर्म है, वरना लोग कहेंगे हिंदू धर्म में ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये जो धारणा है, आपने कहा बहुत सारे भगवान हैं, शास्त्र से आप देखेंगे भगवद गीता से तो भगवान बता रहे हैं अहम आदिर ही देवाना महर्षिनाम च सर्वशः। तो भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में एक ही भगवान है। और अन्य सब भगवान के अंश हैं, अर्थात भगवान के अंश होने के नाते वे भगवान के सेवक हैं। तो ये शास्त्र के माध्यम से जानना होगा। जैसे आपने कहा हनुमान भगवान, हनुमान भगवान कभी नहीं कहते, वे भक्त हनुमान है, भगवान है रामचंद्र। तो हमारी गलत धारणा है, तो इस गलत धारणा को कैसे शास्त्र के माध्यम से जानना होगा। तो आपके लिए हमारा ये सुझाव है कि आप भगवद गीता यथारूप लीजिए, उसको गंभीरता से पढ़िए और फिर उसके बाद जो संशय है आप बताइए, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्ति में जब हमारी शुरुआत होती है दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक है भारवाही, दूसरा है सारग्राही। तो भारवाही भी भगवान की सेवा में आता है लेकिन वो भौतिक भार लेकर, भौतिक बोझा लेकर आता है, वो भौतिक आसक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, ये सब आसक्ति को पकड़कर भगवान की सेवा करना चाहता है। और भगवान का कार्य इन भौतिक आसक्ति को निकालना, तो तब पीड़ा अनुभव करता है। भगवान की सेवा करनी है लेकिन ये जो भौतिक भार है वो नहीं छोड़ना है, हाँ इसे कहते हैं भारवाही। मेरा समाज में नाम अच्छा होना चाहिए, भक्ति करेंगे लेकिन समाज में नाम होना चाहिए, धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, शरीर को बहुत आराम होना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सब अच्छी अच्छी चीज होनी चाहिए, तो ये भारवाही। और दूसरा भक्त है सारग्राही, जो भगवान की सेवा है लेकिन सरल है, वो समझ रहा है। एक भारवाही व्यक्ति है, वो अपने अनर्थों को कभी नहीं जानेगा, अगर कोई उसको बताएगा भी कि आपके अनर्थ है वो सुनेगा नहीं, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भार को लेकर चलना चाहता है, मैं सही हूं और जो मेरे मानदंड में है वो सब सही है, जो मेरी विचारधारा से अलग है वो व्यक्ति गलत है, ये भारवाही। दूसरा सारग्राही, सरल, कि वास्तव में मेरी भूल धारणाएं हैं, मैं अनर्थों से पीड़ित हूं, कैसे मैं अनर्थों से मुक्त हो सकता हूं, वो व्यक्ति सरल, वो व्यक्ति प्रगति करता है। हाँ धीरे धीरे फिर वो कनिष्ठ अवस्था से मध्यम अवस्था, मध्यम से उत्तम अवस्था, इस तरह से प्रगति होता है। वरना ये अवस्था में भारवाही जो है वे हमेशा प्राकृत अवस्था में रहेंगे, प्राकृत उपाधि, जो बाहर की उपाधि है वो भक्ति में लेकर आते हैं, मैं वहां का अध्यक्ष था अभी मैं यहां का अध्यक्ष हूं, वो अध्यक्षता नहीं छोड़ना है, वो आसक्ति नहीं छोड़ना है, तो वहां पर प्रगति नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज समझाएं अच्छे से। तो ये विधि है भक्तों का संग करना, उनसे मार्गदर्शन लेना, समर्पित भाव से भजन क्रिया को पालन करना, फिर अनर्थों से मुक्त होंगे, फिर निष्ठा, इस तरह से भगवत प्रेम हमारे हृदय में उदय होगा। हरे कृष्णा। Oh,